नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना की, उनकी एक सुपर डुपर हिट फिल्म कटी पतंग की, और कटी पतंग के उस सुपर हिट गाने की बात होगी, उसकी मेकिंग की बात होगी, उसके बनने की कहानी हम आपको सुनाएंगे, जो इतना मशहूर हुआ कि आज तकरीबन 50 साल बाद भी उसकी जो रूहानियत है वो बरकरार है। और गीत के बोल हैं, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, उस गली से हमें गुजरना नहीं। और इस गाने की मेकिंग का किस्सा आज हम आपको सुनाएंगे इस पॉडकास्ट में। बात राजेश खन्ना की हो रही है और हम बात कर रहे हैं फिल्म कटी पतंग की। लगातार 17 हिट फिल्में देने वाले राजेश खन्ना की ये दूसरी सुपर डुपर हिट फिल्म थी। साल 1969 से 1971 के दौरान लगातार हिट फिल्में देने वाले राजेश खन्ना की चार फिल्में तो आशा पारेख के साथ ही हैं। और इसी फिल्म में लाजवाब रोल की बदौलत आशा पारेख को सर्वोत्तम नायिका का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। और फिल्म इतनी पसंद की गई कि इसने प्रोड्यूसर शक्ति सामंता के गले भर दिए। यूं समझिए कि उनकी चांदी हो गई और रुपयों से मालामाल हो गए। उस वक्त फिल्म ने तकरीबन 4 करोड़ के आसपास का कारोबार किया, जो आज की अगर दौर से उसकी तुलना की जाए तो तकरीबन 125 करोड़ के आसपास बैठता है। और इन सालों के दौरान राजेश खन्ना अपने पूरे कामयाबी के शिखर पर थे। उनका जो तिलिस्म था वो बॉलीवुड पर चल रहा था। राजेश खन्ना के लिए बॉलीवुड में खुद को स्थापित करना इतना आसान नहीं था। उन्हें सबसे पहले तो धर्मेंद्र से मुकाबला करना पड़ा, जो उस दौर में थे, और बाद के दिनों में फिर अमिताभ बच्चन से वो ताउम्र जूझते रहे। और उससे पहले वाले दौर के हीरो भी क्या कम थे, देवानंद, राज कपूर, शम्मी कपूर, इन तमाम सितारों को तो उन्होंने ही असली टक्कर दी और अमिताभ बच्चन के लिए रास्ता साफ किया। राजेश खन्ना उस दौर के अकेले ऐसे हीरो थे जो अपनी आंखों से अभिनय करते थे। वो चेहरे के एक्सप्रेशन से सब कुछ बयां कर देते थे। जो अभिनय करते हैं या जिन्होंने थिएटर के बारे में जिन्हें थोड़ी बहुत भी जानकारी है, वो आंखों की एक्टिंग से क्या होता है और उसकी काबिलियत का क्या महत्व है और कितनी मुश्किल है, उसे समझ सकते हैं। अभिनय को आंखों की भाषा देनी पड़ती है। सिर को हौले से टेढ़ा करके आंखों से ही सारी बातें कह देते थे काका। कटी पतंग शायद वो आखिरी मूवी थी जिसमें आशा पारेख ने रोमांटिक नायिका का रोल अदा किया। आशा की अदा में नाज नखरे तो नहीं थे, लेकिन एक प्रेयसी वाले सभी गुण थे। बेशक इसमें राजेश खन्ना उनसे छोटे जरूर लगे थे, मगर यह आशा पारेख का कसूर नहीं, उनका किरदार ही ऐसा था। साल 1971 में रिलीज हुई ये फिल्म म्यूजिकल हिट फिल्म थी। आर डी बर्मन का संगीत हर वर्ग को फिल्म से जोड़ गया। खासकर ये शाम मस्तानी गाने ने हर वर्ग पर, हर कैटेगरी पर अपना जादू किया। युवा वर्ग में तो ये गीत दीवानापन इस कदर भर गया कि शादी के बाद हर दंपत्ति नैनीताल में उसी झील के पास हनीमून मनाने जाने लगे। फिल्म 1980 में तेलुगु में भी बनी और इस फिल्म की मूल कहानी गुलशन नंदा ने लिखी थी, जो कार्नेल वुलरिच के उपन्यास आई मैरिड ए डेड मैन पर आधारित थी। और बाद में इसी उपन्यास पर साल 1950 में अंग्रेजी फिल्म नो मैन ऑफ हर वुमेन, नो मैन ऑफ हर ओमेन फिल्म बनी थी इस कहानी पर। और इसी नॉवेल पर बाद में जापानी और फिर फ्रेंच में भी फिल्म बनी। और इस फिल्म में विधवा का जो किरदार आशा पारेख ने निभाया, उस सादगी को देखकर शक्ति सामंत आशा पारेख पर इतना विश्वास करने लगे थे कि वो इस रोल के लिए किसी दूसरी हीरोइन को लेने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्होंने आशा पारेख की सादगी वाली फिल्म पगला कहीं का देखी थी और कटी पतंग में विभिन्न समारोहों से पुरस्कार कटी पतंग ने झटके, फिल्म सुपर डुपर हिट रही। 1972 में आशा पारेख को सर्वोत्तम नायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, जिसका जिक्र हमने पहले किया। और इसी साल शक्ति सामंता को सर्वोत्तम निर्देशक, गुलशन नंदा को सर्वोत्तम मूल कथा लेखक, राजेश खन्ना को सर्वोत्तम नायक, आनंद बख्शी को न कोई उमंग है के लिए बढ़िया गीतकार पुरस्कार से नवाजा गया। और ये जो मोहब्बत है, गाने के लिए किशोर कुमार को बढ़िया प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार मिला और ये सभी पुरस्कार फिल्मफेयर ने दिए और एक ही समारोह में। जरा सोचिए बाकी फिल्मों का क्या हुआ होगा। खैर, इसमें बिंदु का डांस और गीत क्लबों में कैबरे डांस करने वालों का पसंदीदा बन गया। और एक गीत है, मेरा नाम है शबनम और प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं, और गीत के मुखड़े को आज भी उस जमाने के लोग याद करते हैं, बल्कि बाद के दिनों के लोग भी। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है कि माधवी उर्फ मधु यानी कि आशा पारेख एक अनाथ लड़की है जो अपने अंकल के साथ रहती है। अंकल उसकी मर्जी के बिना अपनी पसंद के लड़के से उसकी शादी कर देते हैं और मधु अपने प्रेमी कैलाश यानी कि प्रेम चोपड़ा के पास जाने के लिए शादी वाले दिन भाग जाती है। और जब वो कैलाश के घर जाती है तो उसे बिंदु की बाहों में देख लेती है और इससे उसका दिल टूट जाता है। हताश मधु अंकल के पास लौटती है लेकिन सामाजिक लाज शर्म के मारे अंकल खुदकुशी कर लेते हैं। वो घर छोड़ देती है और अपनी सहेली के घर जाने को एक ट्रेन पकड़ लेती है। ट्रेन में उसकी मुलाकात बचपन की एक सहेली पूनम से होती है और पूनम उसे बताती है कि उसके पति की मृत्यु के बाद वो अपने मुन्ना के साथ अपनी ससुराल नैनीताल जा रही है और पहली बार जा रही है, क्योंकि उनकी लव मैरिज थी और उसके ससुराल वालों ने इस मैरिज को हरी झंडी नहीं दी थी, मंजूरी नहीं दी थी। मधु उनके साथ चले तो उसके लिए भी अच्छा होगा, ये बात पूनम उससे कहती है। लेकिन इस दौरान ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, पूनम घायल हो जाती है और जख्मों की ताव न सहते हुए वो दम तोड़ देती है। लेकिन मरने से पहले वो उसे अपनी जगह भेजने के लिए मजबूर करती है और गोद में अपने बेटे को डाल देती है। मधु मुन्ना को लेकर पूनम बनके उसके ससुराल आ जाती है, चूंकि ससुराल वालों ने कभी अपनी बहू को देखा नहीं होता, इसलिए मधु ही पूनम बनकर ससुराल आती है। अब नैनीताल के लिए जिस टैक्सी वाले के साथ वो जाती है वो उसे लूटना चाहता है, जहां रास्ते में कमल यानी कि राजेश खन्ना उसे बचाता है और अपने घर में पनाह भी देता है। अब राजेश खन्ना वही व्यक्ति है जिसके साथ उसकी मैरिज सेटल हुई थी, लेकिन चूंकि प्रेम चोपड़ा से प्यार करती थी आशा पारे, इस वजह से वो टूट गई थी। और ये बात मधु तो जान गई है मगर राजेश खन्ना अभी तक इस बात से अनजान है। खैर, मधु ससुराल जाने के लिए कमल का घर छोड़ देती है। कमल का घर और उसके कथित ससुर दीनानाथ यानी कि नाजिर हुसैन का घर साथ साथ है। कमल मधु के बेटे से मिलने उसके घर आता है और उसे आभास होता है कि उसे पूनम यानी कि जो मधु है, जो पूनम बनकर आई है, उससे प्यार हो गया है। मधु की किस्मत खराब है कि कैलाश सीन में आ जाता है। वो मधु से पैसे ऐंठने के लिए उसका राज दीनानाथ को बताने की धमकी देता है, कैलाश यानी कि प्रेम चोपड़ा। वो दीनानाथ का विश्वास पात्र भी बन जाता है और सारी जायदाद मुन्ना के नाम लिखवा देता है और मधु को गार्डियन बना देता है, उसका गार्जियन। उसी रात दीनानाथ की जहर पीने से मृत्यु हो जाती है और मिसेस दीनानाथ इसके लिए मधु को जिम्मेदार ठहराती है। मधु को जेल हो जाती है और शबनम दीनानाथ की असली बहू होने का दावा करती है। शबनम यानी कि बिंदु, बिंदु यानी कि जो कैलाश की बाहों में जिसको मधु देख लेती है जब वो शादी तोड़कर अपनी जाती है। और लेकिन मिसेज दीनानाथ उसे बाहर का रास्ता दिखा देती है और उधर कमल यानी कि राजेश खन्ना मधु से बातचीत बंद कर देता है। लेकिन जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो वो उन्हें जेल भिजवा देता है। वो मधु को जेल से लाने जाता है लेकिन मधु रिहा होते ही खुदकुशी करने चली जाती है, लेकिन कमल उसे बचा लेता है, दोनों का मिलन हो जाता है और इस तरीके से फिल्म एक हैप्पी एंडिंग की तरफ आती है। इस फिल्म में एक गाना है और गाना बड़ा मशहूर है, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा उस गली से हमें अब गुजरना नहीं। नैनीताल में शक्ति सामंता की कटी पतंग की शूटिंग चल रही थी और एक बहुत गंभीर गाना, वही जिसका जिक्र हमने किया, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। मगर इसको जो फिल्माया जाना था वो इतनी आसानी से नहीं हुआ। शक्ति सामंता को इस गाने को फिल्माने के लिए खासे पापड़ बेलने पड़े और हुआ यूं कि राजेश खन्ना और आशा पारेख दोनों बोट पर बैठे हैं। दरअसल आपने अगर ये फिल्म देखी हो और ये गाना देखा हो तो ये बोट पर ये गाना फिल्माया गया है। शक्ति सामंता कहते हैं एक्शन और कैमरा चालू हो जाता है। टेप रिकॉर्ड ऑन हो जाता है, मगर इसके साथ ही सैकड़ों बोट पानी में उतर पड़ती हैं। उन पर लदे तमाम तमाशबीन हाथ हिलाने लगते हैं और ये सब कुछ कैमरे की जद में आ जाता है। अब राजेश खन्ना की पॉपुलैरिटी ऐसी थी कि जहां भी शूटिंग हो वहां पर हजारों लोग पहुंच जाते थे, और इतना सीरियस गाना, इतना गंभीर गाना और बैकग्राउंड में तमाशबीनों का खुश होकर हाथ हिलाना सीन और सिचुएशन दोनों को तबाह कर देता है। अब शक्ति सामंता को गुस्सा आता है, वो चिल्लाते हैं कट 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 कट, और वो तमाशबीनों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेहरबानी करें, डिस्टर्ब ना करें और थोड़ा सा दूर रहें। लेकिन अब तमाशबीन हैं कि बाज आते ही नहीं, और आप लोगों को रोक भी कैसे सकते हैं, और रोकेंगे भी तो एक हद तक आप रोक सकते हैं, लेकिन उस चूंकि राजेश खन्ना का तो स्टारडम ही ऐसा था कि लोग दीवाने थे, पागल थे उनके लिए। और आखिर राजेश खन्ना, आशा पारेख उनके फिर महबूब स्टार भी थे। आधे से ज़्यादा दिन निकल गया मगर एक भी शॉट नहीं हो पाया इस गाने का, और आखिरकार पैकअप घोषित हुआ। अब चूंकि शक्ति सामंता प्रोड्यूसर हैं तो उन्हें पैसे के मोल भी मालूम है कि फिल्म उन्हीं की है। अब शक्ति सामंता गहरी सोच में पड़ गए कि कैसे तमाशबीनों को दूर रखा जाए। जब समझाने से काम न चले तो जुगाड़ काम आता है, और अगले रोज शक्ति सामंता ने तमाम बोटें दिन भर के लिए किराए पर ले ली। वो तमाम बोट जिन पर बैठकर तमाशबीन लोग उसी झील में उतर आए थे जिस झील में राजेश खन्ना और आशा पारेख पर यह गाना फिल्माया जाना था। अब तमाशबीन करें तो करें क्या, जब सारी बोट ही किराए पर ले ली गई। अब तमाशबीन तरस गए उस दिन बोटिंग करने को, लेकिन शक्तिदा का काम बन गया। मुकेश की आवाज़ में रिकॉर्डेड ये गाना ज़बरदस्त हिट हुआ, और आगे चलकर इस गाने के ज़रिए तमाम नाकाम आशिकों ने दिल का गुबार निकाला और उसमें बहुत लोग शामिल रहे। क्या आप भी हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।